الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی 272 آیت تک پڑھ چکے ہیں، آج ہم 273 پر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم مال خرچ کرتے تھے، وہ خرچ کرنے کی جو پیچھے ترغیب چلی آ رہی ہے، کافی آیتیں گزر چکی ہیں اس کے اوپر، پہلے جہاد کے لیے بات ہو رہی تھی، اب اسی انفاق کو آگے بڑھا کر تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو فرمایا کہ یہ فقراء کے لیے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، یہ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء اردو میں اس کا مطلب اور ہے، اور عربی زبان میں اس کا مطلب اور ہے۔ اردو زبان میں فقیر کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا، اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند۔ تو ضرورت مندوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، تو فقیروں کے لیے نہیں بلکہ محتاجوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہارا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو مال، یہ فقراء کے لیے ہے، یعنی جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس احتیاج ہے پیسے کی، جو جن کے پاس جو انکم کے ذرائع ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن فقراء بھی یہاں جو زیر بحث ہیں وہ خاص ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھر گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اب اللہ کے راستے میں گھر جانے کی وجہ سے کمانے کے لیے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، اور جو ناواقف آدمی ہوتا ہے وہ ان کے تعفف کی وجہ سے ان کو امیر سمجھ رہا ہوتا ہے، تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو نشانیوں سے پہچان سکتے ہو، لا یسألون الناس احلافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ تو یہ اب ان فقراء کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو زیر بحث ہیں۔ جو مہاجرین آئے تھے ان میں سے تین طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی مواخات ہو گئی تھی، دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اپنے کاروبار وغیرہ سیٹ کر لیے تھے جنہوں نے، اور ان کے حالات اچھے ہو گئے تھے مدینہ میں آنے کے باوجود، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ مدینہ میں آنے کے باوجود اور کوشش کرنے کے باوجود ان کے حالات اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہے، یعنی غریب ہیں۔ تو دیکھنے میں امیر لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ تو تم ان کی اس چیز کو ان کی چہروں کے آثار سے، ان کے حرکتوں سے، ان کی باتوں سے جان سکتے ہو کہ وہ کمزور نظر آ رہے ہوں گے، وہ اس طرح سے چہروں پر خوشحالی دکھائی نہیں دے رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن چونکہ وہ مانگ نہیں رہے ہوتے، تو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں یا غنی ہیں، کم از کم ان کو احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فقیر ضرورت مند، اور غنی بے ضرورت، بے نیاز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کی وجہ سے کسی جگہ پھنس گئے ہیں اور وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، مدینہ میں آنے کے بعد ہر ایک کے لیے کاروبار ملنا آسان نہیں تھا. یہ آج بھی اگر ہم کچھ لوگوں کو کچھ اداروں سے نکال دیں, مثلا ہم کہیں کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, تو ایک بھیڑ لگ جائے گی جن کو پھر کام ملنے میں آسانی نہیں ہوگی. تو اب یہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم پر, تو ہجرت کر کے جب آ گئے ہیں تو ان کے پاس اب پوری طرح سے معاشی معاملات آسانی سے حل نہیں ہوئے تھے, اس لیے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے مسلمانوں سے جو اس وقت مدینہ میں تھے اور کھاتے پیتے تھے کہ ان لوگوں پر دھیان دیں. بعض مفسرین نے اصحاب صفہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہے. نہیں, اصحاب صفہ کے ساتھ خاص ہونا ضروری نہیں ہے, وہ بھی شامل ہیں اس میں بلا شبہ, لیکن وہ صرف ایک جزو ہوگا ان کا, نہ کہ ٹوٹل ان کے لیے اس کو لے لیا جائے. تو یعنی لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, گھر آباد کر لیے ہیں انہوں نے, صفحہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں مالی طور پر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے تم اپنی جیب میں سے خرچ کرو گے. نشانیاں دوبارہ بتا دوں, ایک یہ کہ احسروا فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں, یعنی کسی جگہ پھنس گئے ہوں, جیسے ظاہر ہے کہ اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں, تو اب یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے, اور لیکن کاروبار بھی نہیں کر پا رہے ہیں. لا یستطیعون ضرباً فی الارض, ضرباً فی الارض کا مطلب ہے معاشی جد و جہد کے لیے گھروں سے نکلنا. اس کے لیے سفر ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی آپ صبح, ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں, صبح گھروں سے نکلتے ہیں, دفتروں میں جا رہا ہے, کوئی کاروبار پہ, کوئی دکان پہ, کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی دکان کھول رہا ہے, کوئی کسی جاب پہ جا رہا ہے, تو یہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ضرباً فی الارض کہتے ہیں. تو یہ لوگ شہر سے باہر کسی جگہ پر کام نہیں بن رہا, کوئی کاروبار کرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, کوئی جو وہ کام کرتے تھے پہلے اس کا یہاں کوئی امکان نہیں ہے, سو چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن لوگ ان کو غنی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے پیسے کی, ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مانگ بھی نہیں رہے ہیں, تو وہ پہچانے نہیں جاتے. لیکن فرمایا کہ تعارف ہوں بے سیما, ان کے چہروں سے عیاں ہے کہ وہ غربت کا شکار ہے. تو ان لوگوں کے لیے خرچ کیا جائے گا. یہ خاص ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مہاجرین یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان کی خاطر مدینہ میں ٹھہر گئے ہوں, تو ان کے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, تو جو کچھ بھی تم ان کے اوپر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو اب مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے, ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی تمہاری ضائع نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہوں گے, ایک ایک چیز جو تم نے پائی بھی مشکل سے بھی نکالی ہوگی, آسانی سے نکالی ہوگی, ہر ایک کو جانتے ہوں گے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو یا دن کو, اعلانیہ یا چھپ کر, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو, چھپا کر اور اعلانیہ, رات کا تعلق چھپانے سے ہے اور دن کا تعلق اعلانیہ سے ہے, یہ زبانوں میں عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ باللیل, یہ نہیں کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ ٹائم بتانے کے لیے بتا رہے ہیں, یعنی راتوں کو جو خرچ کرتے ہیں چھپ چھپا کر وہ پیش نظر ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جو تھے پرانے زمانے میں وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ رات کو کسی کے دروازے پر رکھا ہے, کسی کے گھر رکھا ہے چیزیں, یہ ان اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ چھپ کر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا تھا. تو جو لوگ اپنے مال میں سے رات کو یا دن کو خرچ کریں یا چھپا کر کریں یا اعلانیہ کریں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ آدمی صرف یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر خرچ کرے, اگر صحیح نیت کے ساتھ ریاکاری شامل نہ ہو نیت میں, تو دکھا کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے, اور دکھانے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے. तो दिखावे के लिए करेगा तो नेकी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन अगर दिखावे के लिए ना करे, ऐलानिया कर दे, छुप कर कर दे, दोनों सूरतों में उसका अजर अल्लाह के पास महफूज होगा। नेकी जो हमारे मुफस्सरीन एक और बात भी कहते हैं, वो भी सामने आ जाए तो अच्छा है, वो ये कि जो फ़राइज़ होते हैं वो ऐलानिया करने चाहिए, और जो नवाफिल होते हैं वो सिर्रन करने चाहिए, छुप के करने चाहिए। ये बात एक लिहाज से ठीक है, लेकिन बहरहाल लाजम नहीं है कि हम फ़राइज़ जो हैं वो ऐलानिया करें, और लेकिन ज़कात हुकूमत लेने आ जाती है, ऐलान हो जाता है, और 5 वक्त की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी होती है, ऐलानिया हो जाती है, तो वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे फ़राइज़ ऐसे हैं जो हम ऐलानिया नहीं करते, मसलन रोज़े का हम ऐलान तो नहीं करते, फिरते फ़र्ज़ हैं, तो इसलिए ये लाजम नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बात उनकी एक एतबार से दुरुस्त है। फलहम अजरहम इंदा रब्बिहिम, ये कुरान मजीद की बशारत है कि अगर तुमने वो सारे काम नहीं किए जो खैरात को ज़ाया कर देने वाले हैं, तो तुम्हारा अजर अल्लाह के पास महफूज रहेगा। जो चीज़ें अजर को ज़ाया कर देने वाली हैं वो पीछे ज़ेर बहस आ चुकी हैं, एक ये कि एहसान जताना, दूसरा ये कि अजियत देना, पैसा देकर फिर काम करवा लेना या मुश्किल में डाल देना या एहसान जताना, और उसके बाद नीयत को भी बयान किया था कि रियाकारी की नीयत से खर्च कर देना, ये अल्लाह की राह में खर्च करने को ज़ाया कर देती है। इसी तरह उस चीज़ का कोई अजर नहीं मिलेगा जो उसको तुम खुद लेना पसंद ना करो, वो दे दो किसी को, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है, इससे नेकी ज़ाया हो जाती है। तो अगर ये काम मौजूद नहीं है तो तुम्हारा अजर अल्लाह के पास महफूज रहेगा, खा ऐलानिया करो खा छुप कर करो। ऐलानिया बाज़ात बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे, मसलन हमारे माँ बाप खर्च करते थे जब, या सबके ही ऐसा होता होगा कि वो हमें आदत डालने के लिए, हमें सिखाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते थे, खुद हमारे ज़रिए से खाना भेज रहे हैं, किसी को भेजना है, तो ये सारे काम जो थे वो हो रहे होते थे, इसलिए ताकि हम सीखें कि ये भी एक करने का काम है। और इस नीयत से, या पीछे एक और नीयत अल्लाह ताला ने बयान की है कि तस्बीतन मिन अनफुसिकुम, कि अपने आप को दीन पर जमाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने तकवे को बेहतर करने के लिए भी हम अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, ये नीयतें बिल्कुल दुरुस्त नीयतें होंगी। तो तालीम के लिए ऐलान हो सकता है, सिखाने के लिए ऐलान हो सकता है, या लोगों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए कि वो भी आगे बढ़कर ये काम करें, तो ये बिल्कुल जायज़ नीयतें होंगी। लेकिन अपनी रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि मैं नेक बन के लोगों के सामने जा रहा हूँ, या लोग मुझे सखी कहें, या इस तरह की बात। जो दिखावा है वो सिर्फ इस पहलू से नहीं होता कि मैं इसलिए नेकी करूँ कि लोग मुझे सखी कहें या नेक कहें, बल्कि बाज़ुकात इसलिए भी होता है कि अपनी जो अना है उसको भी तस्कीन मिलती है दूसरों के सामने नेकी करके, कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझसे घटिया हो। ये जो अना की कह लीजिए कि आप यारी सी हम करते हैं, ये भी उसी रियाकारी के अंदर आ जाएगा कि मैं अपने आप को बड़ा इंसान साबित करने के लिए, या अपने आप को आपसे बेहतर साबित करने के लिए खर्च कर रहा हूँ। एक है कि मैं अमीर अपनी अमारत दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो दिखावा ही होगा, और एक ये कि मैं सही कहलवाने के लिए, नए कहलवाने के लिए कर रहा हूँ तो ये भी दिखावा होगा, लेकिन एक अपनी अना की तस्कीन के लिए भी हम करते हैं, ये भी दिखावे के अंदर आ जाएगा, जिसको पंजाबी में हम शो मारना कहते हैं। दिखावे दिखावे का एक पहलू ये भी होता है, एक दिखावे का पहलू कि मुझे नेक कहें लोग, एक दिखावे का पहलू कि मैं बस पैसे का इजहार करना चाहता हूँ बस, और कोई नेकी मेरे जहन में नहीं है, तो ये भी दिखावा हो जाएगा, इससे भी अमल ज़ाया हो जाएगा। फलहुम अजरहुम इंदा रब्बिहिम, तो इन शर्तों पर जो नेकी पूरी उतर जाएगी उनको लाजमन अजर मिलेगा, तो उनके रब के पास उनका अजर है। ये जुमला दिल नवाजी का है। रब का लफ्ज़ जो है वो मालिक और आका के मानी में आता है, परवरदिगार के मानी में आता है, तो उनके अजर उनके परवरदिगार के पास है। ये जुमला उधार अजर का है, यानी दुनिया में नहीं बताया गया, बल्कि आखिरत में अजर मिलेगा। उसकी निशानी यह है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत वाले दिन जब वो ये अल्लाह की राह में खर्च किए हुए पैसे अपने हाथ में देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अब इस अजर का, जो दुनिया में पैसे थे उनके खर्च हो जाने का डर था, उनके ज़ाय हो जाने का डर था, उनके चोरी हो जाने का डर था, अब वहाँ जब वो पहुँचेंगे तो जो अजर उनके हाथ में दिया जाएगा उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, और जो खर्च किया होगा उस पर पछता नहीं रहे होंगे, बल्कि खुश हो रहे होंगे कि ओहो मैंने तो 10 रुपये खर्च किए थे, ये तो 700 रुपये बन चुके हुए। तो ये दोनों पहलू खर्च करने के एतबार से यहाँ अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। तो अल्लाह की राह में उसके बंदों पर खर्च करना, ख़ास तौर से उन लोगों पर जो देखने में ठीक लग रहे हों लेकिन ज़रूरतमंद हों, उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा फ़कीरों को दिया जाता है जो मांगने वाले होते हैं, और इसमें हम शायद दुनिया भर से ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। उसकी वजह से लोगों को गलत आदत भी पड़ जाती है, वो काम नहीं करते बल्कि फ़कीरी का एक पेशा इख्तियार कर लेते हैं, यानी वो असल में फ़कीर नहीं होते, वो पूरी पूरी दिहाड़ी यहाँ खड़े रहते हैं, और जितनी मेहनत वो मांगने में करते हैं अगर किसी कारोबार में करें, किसी टोल टैक्स के स्टेशन पर ही खड़े हो जाएं तो वो अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन उनको हमने आदत डाल दी होती है। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए अपने मुआशरे में कि हम गलत आदत डालने वाले तो नहीं हैं, तो इसलिए उन्हीं लोगों के साथ ताबुन करना चाहिए असल में जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन मांगने नहीं आते, ताकि ये जो पेशेवर फ़कीर हैं इनकी तादाद भी कम हो और हम सही जगह पे भी अपने माल को खर्च कर सकें। अलबत्त कुरान मजीद ने ये बात बयान की है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मांगने वाले को ना दें, कुरान ने ये कहा है कि फ़ी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, तो इनके अमवाल में मांगने वाले यानी उर्दू वाला फ़कीर उनके लिए भी हिस्सा है, और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, जो महरूम है उनके लिए भी, जो मांगने आ जाए उसको भी अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, लेकिन बहरहाल ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने इर्द गिर्द निगाह रखें, अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद लोग हों उनके साथ तआवुन करते रहें। तो ये असल नेकी यही है, इनको मांगने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, हम ही क्यों ना आगे बढ़कर उनकी मदद करते। तो ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया ये मुहाजरीन के लिए है ख़ास तौर से, लेकिन बहरहाल उससे कुछ असूल निकलते हैं, हर आयत अपने सियाक व सबाक में ख़ास मानी रखती है, फिर उससे हम कुछ असूल दरियाफ्त कर सकते हैं। उनमें इनमें से इन आयतों में से जो असूल निकल रहा है वो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मुआशरे में जो ज़रूरतमंद होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, उनको देख कर हम पहचान नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं, उनके ऊपर गुर्बत की अलामत बता रही होती है कि ये ज़रूरतमंद हैं लेकिन वो मांगने वाले नहीं होते। तो उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, अगर हम साहिल का ख्याल रख रहे हैं तो महरूम का ख्याल भी रखना चाहिए। आगे फरमाया कि ये जो वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम याज़नून, ये दो हालतें हैं, हाँ दुनिया की जो ज़िंदगी है उसकी ये दोनों हालतें हमेशा कायम रहती हैं। खौफ, खौफ का मतलब होता है कि जान को डर है, माल के ज़ाया जाने का डर है, तो ये सारे खौफ होते हैं, तो ख़ास तौर से माल के जाने का डर, अपने जाने का डर, ये तो दुनिया की मानी हुई चीज़ें हैं, चोरी हो सकती है, पैसा ज़ाया हो सकता है, कारोबार में लगाया जा सकता है, जिसको कर्ज़ दिया वो लेकर खा गया है, जिसके साथ कारोबार किया है वो लेकर हड़प कर गया है, ये सारे खौफ दुनिया में रहते हैं। और हुज़्न ये होता है कि पछतावे को कहते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले क़्यामत वाले दिन इन दोनों चीज़ों से महफूज हो जाएंगे, अपने माल के बारे में, अपने अजर के बारे में। अब अरबों के मुआशरे में दो चीज़ें थीं जो नेकी खैरात करने में रोकती थी, तकरीबन हमारे मुआशरे में भी कुछ इसी तरह की दो चीज़ें हैं। एक चीज़ पहले जिक्र आ चुकी हैं, वो ये कि कुरान मजीद ने बताया कि शैतानु यायदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़ाहशा, कि इंसान जो हैं वो अपने पैसे को अपनी तमन्नाओं पे लगाते रहते हैं, और फ़ाहशा का ज़िक्र किया है, दूसरी जगह तबज़ीर का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है कि इंसान जो है वो तबज़ीर करते रहते हैं। तबज़ीर का मतलब है कि अल्लल्ले तल्लों में पैसे उड़ा दिए, नशे में पैसे उड़ा दिए, गलत कामों में उड़ा दिए और इसराफ़ कर डाला, ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ फ़ाहशा का ज़िक्र किया है। तो ये जो तमन्नाएँ हैं, लज्जतें हैं, दुनिया की तफरीहात हैं, दुनिया की इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी हमारा माल हमसे ज़ाया करवा देते हैं। वही पैसा जो हमने इन चीज़ों पे लगाया होता है वही हम किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं, एक ये पहलू होता है जो हमें रुकावट बनता है। दूसरा पहलू ये होता है कि हम किसी के साथ क्यों तआवुन करें, हमें इसका नुकसान होगा, उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ शैतानी के लफ्ज़ों में बयान किया था, यायदुकुमुल फ़क्र, वो तुम्हें गुर्बत से डराता है। ये इसी सूरह की आयत 268 है, 268, ठीक है। तो अब 268 में दोनों बातें बता दी थी। अब जो फ़क्र वाला पहलू है उसमें एक और चीज़ पैदा हो जाती है, वो अरबों के मुआशरे में या जिन मुआशरों में ये पेशा पाया जाता है उनके यहाँ ये चीज़ रंग इख्तियार कर जाती है, वो सूद है। सूद में सूद देने वाला सदका और खैरात और कर्ज़ देने की बजाय पसंद करता है कि कोई ज़रूरतमंद सामने आ जाए तो वो उसको सूद पे पैसा दे दे, कोई ज़रूरतमंद सामने आ जाए तो उसको सूद पर पैसा दे दे, ये उनका पसंदीदा मशगला होता है, पैसे आते हैं इससे। तो अब ज़रूरतमंद मुआशरे में हज़ारों होते हैं तो ये लोग फिर उन मौाक़े की तलाश में रहते हैं कि कोई ज़रूरतमंद हाथ में चढ़ जाए तो उससे पैसे हासिल करेंगे, उसको तंग करेंगे उसको। तो अब उस चीज़ को ले लिया, फ़क्र से जुड़ी हुई चीज़ है ये, लेकिन अलग से अल्लाह ताला ने उसको ज़ेर बहस ले आए हैं कि सूद पे पैसा देने वाले भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अब उसको अल्लाह ताला ने तमसील के अंदाज़ में बयान किया है कि उनकी सूरत हाल क्या होगी। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैउ व हर्रमर रिबा फ़मन जाहु मुहैज़तुन मिन रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़ व अमरुहु इलल्लाह व मन आदा फ़उलाइका असहाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो सूद खाते हैं वो इस तरह से उठेंगे कि जैसे वो आदमी उठता है जिसको शैतान ने जुनून लाहक कर दिया हो। ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये कहते हैं कि जो रिबा है, सूद है, वो तो बिल्कुल तजारत के जैसा है। तो देखो कि अल्लाह ने बै को हलाल कर दिया है, यानी तजारत को हलाल कर दिया है और सूद को हराम कर दिया है। ये कितनी अजीब बात है जो अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो सूद खाने वाले हैं ये वैसा ही अमल करेंगे, इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा सूद खाने वाले हैं, उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसे किसी को जुनून लाहिक हो गया हो। यतखब्बतहु को हमारे उर्दू दान लोगों ने, क्योंकि खपती का मुहावरा उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, तो उससे लोगों ने यह समझ लिया कि यतखब्बत का मतलब है खपती कर दिया, मजनून कर दिया। हालांकि ये मुहावरा है अरबों का, यतखब्बत का मतलब होता है छूना, टच करना, तो मारना, कोई चोट लगाना। तो मस कहते हैं जुनून को, तो जिसको शैतान ने छूत लगा दी हो, यानी जुनून लगा दिया हो, जिसको शैतान ने जुनून लगा दिया हो। तो ये मुहावरा है, इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि शैतान के छूने से आदमी पागल हो जाता है। ये अरबों का मुहावरा है, इसके हरगिज़ माने ये नहीं है कि शैतान के छूने से आदमी पागल हो जाता है, जिसको हम शैतान चिमट जाना कहते हैं या जिन चिमट जाने कहते हैं। ये तसव्वुर कोई तसव्वुर नहीं है कुरान मजीद में, इसकी ताईद नहीं की गई है। ये मुहावरा है अरबों का, जिसको वो बहुत संगीन किस्म का पागल कहना हो, यानी आखिरी दर्जे का पागल, तो उसके लिए ये मुहावरा बोलते हैं कि जिसको शैतान ने जुनून लाहिक कर दिया हो। तो अब जो सूद खार है वो क्यामत वाले दिन पागल सा उठेगा, क्यामत वाले दिन खपती सा उठेगा, जैसे उसके ऊपर कुछ जुनून सवार है। जैसे तो अगर सूद खार को देखें तो एक नफ्सियात उसकी नज़र आती है कि वो रुपया रुपया इस तरह से देता है कि उसके ऊपर मुनाफा आए उसको। उस खब्त को यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि क्यामत वाले दिन भी वो खब्ती उठेगा, क्यामत वाले दिन भी उसी जुनून की हालत में उठेगा जो दुनिया में उसको। ऊपर ये बात कही थी कि उनके ऊपर कोई खौफ और हुज़न नहीं होगा, इसको वहाँ भी खौफ और हुज़न लाहिक होगा। ये वहाँ भी पैसे के लिए तरस रहा होगा, वहाँ भी पैसे के लिए बेचैन होगा। उसके ऊपर वही कैफियत होगी जो दुनिया में उसकी फ़कीरों को ढूंढने में होती थी, कोई मोहताज आ जाए तो उसको मैं फंसा लूँ अपने, उसको वहाँ अपने एक एक रुपये के बारे में जो मसला बना हुआ था वही कैफियत उसकी वहाँ होगी, लेकिन वहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। अब वो एक एक रुपये को याद करेगा, काश मैंने फलां आदमी को खैरात में दे दिए होते, काश मैंने फुला आदमी को सूद के बगैर कर्ज दे दिया होता। तो वो वहाँ बैठकर वही हिसाब किताब कर रहा होगा जो वो दुनिया में बैठकर हिसाब कर रहा होगा, लेकिन अब उसका रुख दूसरा होगा। यहाँ रुख क्या था कि वो मेरे हाथे चढ़ जाए तो मैं उसको इतने पैसे दे दूँगा और मुझे इतना फ़ायदा होगा, और वहाँ वो ये बैठकर सोच रहा होगा, काश मैंने उसको ये ना दिए होते, काश मैंने उसको वैसे ही खैरात कर दिए होते, काश मैंने उसको कर्ज़ दे दिया होता, सूद पर ना दिए होते पैसे। ये वो वहाँ पर बैठकर दोजख में यही कुछ सोच रहा होगा। अब रिबा को समझ लीजिए, फिर अगला जुमला वाज़े करता हूँ मैं। जो रिबा है वो एक मुआशी अमल है जिसमें कर्ज़ के ऊपर पैसे दिए जाते हैं, कर्ज़ के ऊपर, और फिर उस कर्ज़ के देने पर वक्त गुज़रने के बाद कुछ इजाफ़ी रकम वसूल की जाती है। वक्त गुज़रने के बाद कुछ इजाफ़ी रकम वसूल की जाती है। मसलन मैंने आज आपको 1 किलो चावल दिए और आपने मुझसे उधार लिए, तो मैंने कहा कि भई उधार तुम लेकर जा रहे हो तो ठीक है, आज ये नकद लोगे तो 100 रुपये किलो है, अगर हफ्ते बाद पैसे दोगे तो 110 रुपये देने होंगे। आपने कहा जी ठीक है, आपके घर मेहमान आए हुए थे, आप ज़रूरतमंद थे। आपने कहा ठीक है, मैं 110 रुपये दे दूंगा आपको। तो ये चावल मैंने सूद पर बेचे हैं। ये जो हमने इजाफा मांगा है यही रिबा है। तो कर्ज पर ये होता है, ठीक है, उधार पर होता है, ना के किसी और चीज़ पर, नकद चीज़ों पर नहीं होता। तो उधार चीज़ों पर ये होगा। उधार किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसिया का लफ्ज़ बोला है, हम उसके लिए उधार का लफ्ज़ बोलते हैं या कर्ज़ का लफ्ज़ बोलते हैं। कर्ज़ का लफ्ज़ ज़रा दूसरे मानी भी रखता है, और इसी तरह हमारे यहाँ जो लोन अंग्रेज़ी का तर्जुमा है वो भी दूसरे मानी भी रखता है, तो इसलिए मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा, मैं उधारी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। और मेरे ख्याल में इसी में सारे मसले का हल है। जितनी चीज़ें उधार हम लेकर आते हैं, तो वक्त गुजरने पर क्या हम चीज़ लेते हैं? किराया लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी ये आप टेंट ले जाइए, एक दिन आपने बारात के लिए, तो टेंट मुझे कल किराया दे दीजिए, तो टेंट मैं किराए पर ले आता हूँ। या शादी ब्याह के लिए मेज़ कुर्सियाँ हम किराए पर ले आते हैं, या घर किराए पर ले लेते हैं रहने के लिए। तो इसमें क्या हम करते हैं कि एक चीज़ हम दे देते हैं, वो चीज़ हमारे पास उधार नहीं हुई होती, किराए पर ली हुई होती है, ठीक है, किराए पर ली हुई होती है, लेकिन वो हमारी नहीं होती, किसी और की होती है और हम उसमें रह रहे होते हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उधार की एक किस्म है, लेकिन इसको हम उधार नहीं कहते। यानी किराए पर जो मैं घर लेता हूँ उसको कहते हैं उधार नहीं लिया हुआ मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये घर ले लूँ रहने के लिए और किराया ना दूँ, तो मैं कहूँगा कि जी मेरे पास उधार का घर है, मैंने इसका किराया नहीं देता हूँ, मेरे दोस्त का घर है और मैं रह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर। तो उधार चीज़ पर किराया नहीं होता, उधार चीज़ पर किराया नहीं होता। तो अगर कोई उधार चीज़ों पर किराया लेना शुरू कर दे तो ये सूद हो जाएगा। तो जितनी उधार चीज़ें जाती हैं, अगर उधार चीज़ पर किराया लेना शुरू कर दिया जाए तो ये सूद हो जाएगा। उधार चीज़ पर किराया लेना शुरू कर दिया जाए तो सूद होगा। अब उधार होता क्या है? उधार ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी करने के लिए वक्ती तौर पर उसकी मदद होती है। ये मदद होती है, ये सदका और खैरात की एक शक्ल है कि मैंने आपको चंद दिन के लिए कुछ पैसे दे दिए, आपने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और आपने अपने सहूलत से मुझे वापस कर दी। तो ये एक तरह से सदका खैरात की एक किस्म है, लेकिन इसमें पैसे वापस आने होते हैं, इसलिए इसको उधार कहा जाता है। तो अगर कोई आदमी ये नेकी करने को तैयार ना हो कि मेरी ज़रूरत में मेरी मदद कर सके, और वो कहे जी मैं तो मदद करूँगा सिर्फ इस शर्त पर कि आप 100 रुपये उधार ले जाएं तो कल 110 रुपये वापस कर दीजिए। अब एक ये सादा शक्ल है, इसमें रुपया हो, पैसा हो, घर हो, जो कुछ भी हो, आपने अगर उधार दिया है तो उस पर पैसे इजाफी नहीं ले सकते। किराए पर दिया है तो आप इजाफी पैसे ले सकते हैं। अब किराए की वजह से एक फ़र्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें किराए पर उठती हैं, कुछ चीज़ें किराए पर नहीं उठती हैं, ठीक है। मसलन दाल, चीनी, चावल, रुपया, ये किराए पर नहीं उठते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैं चीनी किराए पर लेकर आया हूँ या चावल किराए पर लेकर आया हूँ, नहीं। ये या उधार होते हैं या नकद होते हैं, किराए पर नहीं होते। फिर हमारे उलमा ने एक फ़र्क ये किया। पहला फ़र्क यह है कि उधार, कोई पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी उधार चीज़ आप लेंगे जो ज़रूरत के लिए आप लेते हैं, उधार मांग रहे हैं, वो खा किसी भी नेचर की हो, उसके ऊपर आप जायद पैसे मांगेंगे तो वो नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि आप तआवुन आपसे मांगा गया है और आप तआवुन करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी सूरत यह है कि कुछ चीज़ों में हम किराए पर लेते हैं तो उसको हलाल किया गया है, किराए को हराम नहीं किया गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका किराया नहीं लिया जा सकता, खा किराया लेने पर आप आ भी जाएं, उसका किराया नहीं लिया जाएगा। वो चीज़ें हैं जिनको हम आम तौर से उधार देते हैं, किराए पर नहीं देते। तो उनके ऊपर हमारा, हाँ, जो पाकिस्तान में सूद है वो सिर्फ इसी पर माना जाता है। पाकिस्तान में सूद, मेरे अपने उस्ताद की राय यही है कि वो चीज़ें जो इस्तेमाल करने पर सर्फ हो जाती हैं, उनके ऊपर वक्त गुजरने पर इजाफी चीज़ नहीं ली जा सकती। सर्फ हो जाने वाली चीज़ें किराए पर नहीं जाती हैं। ठीक है, मैं जो फ़र्क बता रहा हूँ वो किराए की रियायत से बता रहा हूँ, और बाकी जो हमारे उलमा हैं वो बताते हैं कि काबिले सर्फ और कंज्यूमेबल और यूज़ेबल का टर्म बोली जाती है। कंज्यूमेबल वो के इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी, और यूज़ेबल वो के जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म ना हो, उनका किराया लिया जा सकता है। तो मैं जो फ़र्क कर रहा हूँ वो ये है कि कर्ज़ पर, उधार पर जो चीज़ दी जाएगी उस पर इजाफी पैसे लेना हराम है, खा वो यूज़ेबल हो खा कंज्यूमेबल हो। लेकिन कंज्यूमेबल में हम किराए पर नहीं जा सकते, यूज़ेबल में हम किराए पर जा सकते हैं। ये किराए के फ़र्क के लिए बात मैं अलग कर रहा हूँ, तो ये बात वाज़े हो जानी चाहिए। अब रिबा ये है कि जब भी मैंने तावन मांगा है आपसे, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी आप अपना मेज़, हमसाए से मैंने कहा जी मेरे घर मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पास एक मेज़ है, मैं दो चाहिए मुझे, तो आप दे दीजिए मुझे मेज़। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो किराया लूँगा, तो ये नाजायज़ हो जाएगा। मैं तावन मांगने गया हूँ आपसे, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह की चीज़ों पर भी किराया लेना शुरू कर दूँ तो ये कारोबार बन जाएगा, सूदी जहन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब मैं ताबुन लेने गया हूँ तो आप मेज़ दे दें या ना दें, इनकार कर दें ज़्यादा बेहतर है, मैं किसी और से मांग लूँगा। तो ये जो मेज़ मैंने आपसे ताबुन के लिए ली है, इसके ऊपर किराया लेना नाजायज़ होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अब रिबा में आ जाएगी। तो रिबा जो है वो दरअसल ताबुन के लिए मांगी गई उधार चीज़ पर किराया लेना है। लेकिन जो चीज़ें उधार जाती हैं किराए पर नहीं जाती, उसमें बिल्कुल जुर्म वाज़ेह हो जाता है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो उधार चीज़ें जो हैं उसमें अब एक और मसला वाज़ेह रहना चाहिए, वो ये कि बाज़ अहादीस में ये बात कही गई है कि जो जौ, बाजरा, गंदम वगैरह है, इनको आप देंगे उधार और वही चीज़ लेंगे वापस, तो तब भी सूद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 किलो चावल बासमती के कर्नल ग्रेड के उधार दिए, और अगले हफ्ते आपने वही चावल, वही बासमती, वही कर्नल ग्रेड के चावल वापस लिए, तो हदीस कहती है कि इसमें सूद हो जाएगा। इसमें अब दो हल हैं, एक मेरे उस्ताद ग्रामी का हल है, वो ये कहते हैं कि ये रवायत तब्दील कर दी गई है, जुमला कुछ और था लेकिन उसके साथ दूसरी रवायत का जुमला लगा दिया गया है। एक हल यह है, ये भी मसले को हल कर देता है, रवायतें बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा हल ये है कि असल में अजनास में ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज अभी नवंबर दिसंबर में नई फसल आई चावलों की, तो नवंबर दिसंबर में जब चावल की नई फसल आएगी तो बासमती कर्नल लेवल के चावल हो सकता है 200 रुपये किलो हों, लेकिन 4 महीने गुजरेंगे तो वही चावल महंगे हो जाएंगे। अब जब मैं 4 महीने के बाद बासमती के वही 1 किलो चावल उसी मेयार के लूँगा, तो मैं महंगे चावल ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ गई है। चावल उतना ही है, चावल किलो ही है, मेयार भी वही है, मिसल भी वही है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो अजनास में ये एक प्रोसेस होता है, फसल आने पर फसल सस्ती होती है, फसल के आने के बाद टाइम गुजर जाता है तो फसल महंगी हो जाती है। इसको भी आप सबने रोका है कि इस तरह के काम ना करना कि जब एक फसल आई है तो बस उस फसल के, अब उसका हल आपने बताया है, उसका हल ये बताया कि उसकी कीमत मुकर्रर कर लो कि मसलन आज की कीमत है, आज 1 किलो नवंबर के महीने में बासमती चावल 100 रुपये किलो हैं, तो तुम अगर 4 महीने बाद जाके 100 रुपये के चावल मुझसे वापस करोगे, वो आधा किलो हो तब, वो 3 पाव हो तब, ताकि सूद ना बने, तो ये आपने उसका हल भी बताया इसका। तो तो ये हल तभी है कि जब फसल की कीमत आगे बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में जो रिबुल फजल है वो असल में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ अजनास में, हमारे यहाँ अब करेंसी भी अजनास में चली गई है, इसकी कीमतें भी बढ़ती घटती रहती हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी फिर एहतियात करनी पड़ेगी कि हम करेंसी जब दें तो उस वक्त भी उसकी कीमत तय कर लें। कि मिसाल के तौर पर मैं कर्ज़ दे रहा हूँ आपको, तो आप मुझसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि 200 रुपये लेकर जा रहे हैं, तो ये चलो 300 कर लेते हैं, $1 के बराबर है, 300 रुपये आप कर्ज़ लेकर जा रहे हैं, तो अब 6 महीने के बाद जब वापस करेंगे तो $1 के बराबर रकम वापस करेंगे, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम सूद से बच जाएंगे। तो आजकल करेंसी भी जो कागज़ वाली करेंसी है वो उसी दायरे में चली गई है। पुराने ज़माने में ये आसानी होती थी कि सोने का सिक्का है तो सोने का सिक्का 100 ग्राम का पहले लिया था वही वापस कर दिया, तो उसमें वो मसला नहीं होता था जो अब हमारे यहाँ करेंसी के साथ होने लग गया है। तो रिबल फजल सिर्फ इतना है, रिबल फजल एक हकीकत है, लेकिन वो रिबल फजल जिस तरह से समझा गया वैसे नहीं है। रिबल फजल दरअसल ये है कि अजनास के वक्त गुजरने के साथ चीज़ की कीमतों में, जिन्स की कीमतों में इजाफा हो जाता है या कमी हो जाती है। तो जब आप वही चीज़ उतनी ही मिकदार की, उतनी ही क्वालिटी की वापस लेंगे तो सूद पैदा हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई थी, उसको समझा नहीं गया, इसलिए वो फिर एक ऐसा कि बस इन अजनास को तबादला नहीं करना, तो ये मतलब नहीं था। वक्त गुजरने के साथ ही तबादला पेश नज़र है और वो वाक़ता सूद होता है क्योंकि उसकी कीमत तब्दील हो गई होती है। तो ये रिबा है। उसके बाद आगे जो फरमाया कि ये कहते हैं कि बै जो है वो तो सूद की तरह, कि तजारत भी क्या करते हैं हम, तजारत में क्या करते हैं कि मैंने ये गिलास 5 रुपए का ख़रीदा था और ख़रीद कर मैं अपने बाज़ार में ले आया, मैं किसी फैक्ट्री से ख़रीदा था मैंने 5 रुपए का, यहाँ आकर मैंने 6 रुपए का बेच दिया, तो ऐसे ही तजारत कर रहा हूँ कि मैंने 1 किलो चावल दिए, 1.25 किलो वापस ले लिए, जैसे 5 रुपए का गिलास लिया था 6 रुपए का बेच दिया, तो एक ही जैसा है। तो ये असल में उसकी पीछे जो मैंने हकीकतें सारी बताई हैं उनसे सरफ़ नज़र करना है। ऐसा नहीं है कि यह तजारत की तरह है, तजारत ये होती है कि मैंने 5 रुपए का गिलास 6 रुपए का बेचा है, लेकिन वो कौन आदमी होगा कि ये गिलास ले और यही गिलास मुझे वापस करे और 1 रुपया और भी दे, ये तजारत नहीं हो सकती। या सादा लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि मैं आज दुकान लगाऊँ यहाँ पर कि मैं 100 रुपया बेचूँगा 110 रुपये का, 100 रुपया बेचूँगा 110 रुपये का, कोई लेगा मुझसे, तो ये तजारत कैसे हो गई है? तो ये तजारत नहीं हो सकती। वो उधार पर जाएगा तो फिर मामला होगा, तो उधार पर जब जाएगा तो क्या उधार पर जाने से कीमत बढ़नी चाहिए? ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो अब ये जो पूरा जाब्ता हो गया कि अब अल्लाह ने बिलाशुबा तजारत को जायज़ करार दिया है कि 5 रुपये का गिलास ख़रीद कर 6 रुपये में बेचे, जायज़ करार दिया है, उसमें बस ये है कि आप इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते इन चीज़ों पर जो जुल्म हो जाए किसी के साथ, नाइंसाफ़ी हो जाए, यानी 1 रुपए की भी एक वर्थ है और ग्लास की भी एक वर्थ है। तो मसलन ये ग्लास मैं 500 रुपए का बेच सकता हूँ क्या? क्या इसकी वाकई इतनी वर्थ है? तो अगर कोई आदमी ये ग्लास जो 5 रुपए का मिल रहा था वो 500 रुपए का बेचेगा तो उसने 495 रुपए का नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि इसकी वर्थ वो नहीं है। तो एक वर्थ उसकी बनती है, वो वर्थ के मुताबिक उससे प्रॉफिट लेगा, 1% ले ले, 2% ले ले, 5% ले ले, लेकिन वो इतना बढ़ा दे उसको कि वो उसकी वर्थ के मतलब पैसे की जो वर्थ है और इसकी जो वर्थ है वो नाइंसाफ़ी का रूप इख्तियार कर ले, तो वो प्रॉफिट नाजायज़ हो जाएगा। फरमाया कि फ़मन जाहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फ़न्तहा, तो जिसके पास खुदा की ये मौइज़त पहुँच गई और वो उससे रुक गया, यानी सूद लेना छोड़ दिया, फ़लहु मा सलफ़, तो पीछे जो वो सूद खा चुका है वो उसको माफ़ किया गया, वह अमरुहु इलल्लाह, अलबत्ता क़यामत में क्या मामला होगा वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया है, यानी उसका फ़ैसला यहाँ नहीं सुनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जुमला अगर अल्लाह ताला इस तरह से बोल देते कि जिसने सूद से बाज आ गया तो फिर वो माफ़ हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए, नहीं, वो उसने कत्ल किया है, चोरी की है, या उसने सूद में भी जो सूद का असूल था उसमें धोखे दिए हुए हैं, उसमें कुछ और तरह के मामला किए हुए हैं, तो वो अलग से देखे जाएंगे, लेकिन सूद उसका माफ़ कर दिया गया जो उसने खा लिया है, उसको माफ़ कर दिया गया। लेकिन गुनाहों का मामला क़यामत वाले दिन दूसरे गुनाहों का साथ चलता रहेगा। वमन आदा फ़ाउलाई का असहाबुन्नार, और जिसने नबी अल्लाह ताला की तरफ से ये नसीहत आने के बाद भी बात नहीं मानी और सूद लेता रहा, तो वो दोज़ख में जाएगा और उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद की ये आयतें जब उतरी तो उससे पहले जो लोग सूद का कारोबार कर रहे थे, बहुत सारे लोग अरब करते थे, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के बारे में रवायतों में आता है कि वो ये काम करते थे। इस तरह के लोग जो हैं वो फिर ज़ाहिर है कि काफ़ी बड़ी तादाद में थे, इनको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से निकाला गया होगा और फिर एक दिन ये ऐलान कर दिया गया कि अब इस नसीहत के बाद जो सूद खाएगा वो गोया अल्लाह के मुकाबले में आ जाएगा और वो दोज़ख में जाएगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के सरी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी होगी, तो अल्लाह ताला के किसी सरी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कुफर है और वो दोज़ख में ले जाने का बायस बनेगी। तो इसलिए ये सिर्फ़ सूद की वजह से मामला नहीं था, बल्कि दो इकट्ठी चीज़ें आग हो गई थी, एक सूद था और एक ये कि सूद के साथ साथ आपने अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी भी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब सूद का काम करेगा वो बिलाशुबा यही हरकत करेगा। अब सूद के बारे में कर्ज़ कोई भी नौइयत का हो, उधार किसी भी नौइयत का हो, उसके ऊपर पैसे ज़्यादा लेना सूद है। अलबत्ता जो चीज़ें मैं किसी कारोबार में शराकत करता हूँ तो ये पैसा कर्ज नहीं होता, ना वो ज़रूरतमंद है ना मैं उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए दे रहा हूँ, मैं उसके कारोबार में शरीक हो रहा हूँ। तो जब मैं कारोबार में शरीक हो रहा हूँ तो प्रॉफिट ले सकता हूँ, ये मुजारबा और मुशारका की शक्ल है जो भी होगी, तो उसमें गुनाह नहीं है। कर्ज़ के ऊपर इजाफी पैसे लेना गुनाह की बात है। तो आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं किसी कारोबार में, उसके जो भी कवायद ज़वाबत तय हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा देना किसी को, मनी लेंड करना किसी को दे देना, ये कर्ज़ नहीं है। ये इसके कई मानी हैं, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं आप पैसा लगा रहे होते हैं, ये कर्ज़ नहीं है। कर्ज़ सिर्फ वही होता है जिसको मैं उधार कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से उधार का मेज़ ले आया हूँ, उधार की चीनी ले आया हूँ, उधार का दाना पानी को ले आया हूँ, तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर पैसे इजाफी लेना ये जुर्म होगा। बाकी जो कारोबार में हम शराकत करते हैं वो एक अलग चीज़ है, उसमें बास शक्लें सूद की हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर किया तो किसी वक्त वाज़े कर दूंगा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।